بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو کہ جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے الفاظ یہ ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پاک پر اس طرح توکل کرو کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لا رازا کا کم کما یرزق الطیر، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی ویسے ہی رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تغدو خماسن و تروح بطانن، کہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو اپنا پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، نجات دلانے والے اعمال میں سے ایک عمل اللہ تبارک و تعالی پر توکل یعنی بھروسہ اور اعتماد کرنا بھی ہے۔ توکل کی تعریف یہ ہے کہ اسباب اور تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے رب تبارک و تعالی پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دیا جائے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ ہم نے جو حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں ہمیں یہ بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے، اگر تم اس طرح توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ تمام امور میں اعتماد اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندے کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ اسباب اختیار کرے، وہ تدابیر اختیار کرے، وہ کوشش کرے، محنت کرے، اور اس کوشش اور محنت کا رزلٹ، نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دے۔ پھر اپنے آپ کو یہی کہے کہ میری طرف سے جو کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، اب اس کا نتیجہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ جانا یہ توکل نہیں ہے، بلکہ توکل یہ ہے کہ اسباب بھی اختیار کرے، تدبیر بھی کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا نتیجہ چھوڑ دے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرا رب میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو اسباب اور تدبیر کو اختیار نہ کریں تو وہ توکل کرنے والے نہیں ہیں۔ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے یا مسجد میں بیٹھا رہے اور یہ کہے کہ میں کوئی کام بھی نہیں کروں گا، میرا رزق مجھ تک پہنچ جائے گا، تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے؟ تو امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جاہل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरा रिज्क मेरे नेजे के नीचे रखा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, लो तवक्कल तुम अलल्लाह हक्का तवक्कुल ही ला रज़ाका कुम कमा यरजुकु तायरु तगदु खिमासन व तरूहु बितानन, के अगर तुम अल्लाह तबारक व ताला पर उस तरह भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें परिंदों की तरह रिज्क अता फरमाएगा। परिंदे भी अपना रिज्क हासिल करने के लिए अपने घोंसले में बैठे नहीं रहते, वो भी सुबह जाते हैं। यानी सबब अख्तियार करना पड़ता है, उनको अपने घोंसले से निकलना पड़ता है, तब अल्लाह तबारक व ताला शाम को भरे पेटों के साथ उनके घरों की तरफ उनको लौटाता है। इसमें गोया के इशारा है इस बात की तरफ कि जो अल्लाह तबारक व ताला पर तवक्कुल करने वाला है वो घर में हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहे और बोले कि मेरा रिज्क मुझे यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो ये जाहिल है, ये तवक्कुल को जानता ही नहीं है। तवक्कुल नाम है इस बात का कि असबाब और तदाबीर अख्तियार करके इसका नतीजा अल्लाह तबारक व ताला पर छोड़ दे। और फिर इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि क्या ये शख्स सहाबा को नहीं देखता, कि क्या सहाबा से भी कोई ज्यादा तवक्कुल करने वाला था? लेकिन इसके बावजूद सहाबा तिजारत भी करते थे, सहाबा तिजारत के लिए सफर भी किया करते थे, खेती बाड़ी भी किया करते थे, लेकिन इन तमाम असबाब को अख्तियार करने के बावजूद उनके जहन में ये बात थी, हमने कोशिश करनी है, अल्लाह पाक पर भरोसा करना है, तो अल्लाह तबारक व ताला तिजारत में, अल्लाह तबारक व ताला खेती बाड़ी में, और अल्लाह तबारक व ताला हमारे रिज्क में बरकत अता फरमाएगा। गोया कि उनका इस बात पर यकीन था कि जो हमें मिल रहा है ये हमारी मेहनत और कोशिश से नहीं है, इसमें हमारा कोई फजल और कमाल नहीं है, हमारा काम है कोशिश करना, और जो अल्लाह पाक अता फरमाता है ये दर हकीकत अल्लाह तबारक व ताला का हमारे ऊपर एहसान है। तो कोशिश करे, भरोसा और एतमाद अल्लाह ताला की जात पर करे। फरूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा कुछ लोगों से मिले और उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम मुतवक्किलीन हैं, हम तवक्कुल करने वाले हैं। तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम मुतवक्किल नहीं बल्कि तुम दूसरों पर बोझ बनने वाले हो। और फिर इरशाद फरमाया कि मुतवक्किल तो वो होता है कि जो दाना जमीन पे फेंक देता है और फिर अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखता है कि अल्लाह पाक उसको अता फरमाएगा। दर हकीकत ये वो लोग थे कि जो हज के सफर को निकलते थे लेकिन ज्यादा राह साथ नहीं लेते थे और कहते थे कि हम तो तवक्कुल करने वाले हैं, और फिर जब रास्ते में सफर करते तो लोगों से सवाल करते, उनको बताया गया कि ये कौन सा तवक्कुल है कि तुम असबाब अख्तियार करते नहीं हो और फिर लोगों से बाद में सवाल करते फिरते हो, ये तो कोई तवक्कुल नहीं है। हजरत अबू मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अहले यमन या अहले यमन में से कुछ लोग हज को जाते और ज्यादा राह नहीं लेते और कहते हम मुतवक्किल यानी अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में ये आयत नाजिल फरमाई, ज्यादा राह साथ ले लो इसलिए कि बेहतरीन ज्यादा राह ये है कि बंदा तकवा अख्तियार करे। सवाल करना ये तकवा नहीं है और सवाल करने वाला मुतवक्किल नहीं है, जो सवाल से बचने वाला है दर हकीकत वो मुतवक्किल है। तो इन लोगों के हक में ये आयत नाजिल हुई कि ये तुम्हारा कौन सा तवक्कुल है कि तुम घर से बगैर किसी असबाब के निकलते हो और अपने आप को कहते मुतवक्किल हो लेकिन तुम लोगों से सवाल करते फिरते हो? सवाल करना ये कोई तवक्कुल तो नहीं है, ये तकवा और परहेजगारी तो नहीं है। तकवा और परहेजगारी ये है कि तुम वो असबाब अख्तियार करो कि जिससे तुम सवाल करने से बच जाओ। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तवक्कुल की तफसीली तारीफ बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, तवक्कुल दरअसल इल्म, कैफियत और अमल तीनों चीजों के मजमूए का नाम है। मुराद ये है कि बंदा इस बात को जान ले कि फैले हकीकी यानी तमाम अमूर के करने वाली जात अल्लाह तबारक व ताला की जात है। तमाम मखलूक मौत, जिंदगी, तंग दस्ती, मालदारी, हर शय को वो अकेला ही पैदा फरमाने वाला है। बंदों के काम संवारने पर उसे मुकम्मल इल्म और कुदरत है। उसका लुत्फ व करम और उसका रहम तमाम बंदों पर इज्तमाही एतबार से भी है और हर बंदे पर इनफरादी एतबार से भी है। उसकी कुदरत से बढ़कर कोई कुदरत नहीं और उसके इल्म से ज्यादा किसी का इल्म नहीं। उसका लुत्फ व करम और मेहरबानी बेहिसाब है। जब बंदे को इन तमाम चीजों का इल्म हो जाता है यानी उसके जहन में ये तमाम चीजें आ जाती हैं, जिंदगी, मौत, रिज्क, तंगदस्ती, मालदारी, ये सब का फ़ाइल हकीकी अल्लाह पाक की जात है और अल्लाह पाक लुत्फ व करम करने वाला मेहरबान जात है। जब बंदे को इस बात का इल्म आ जाता है तो इस इल्म के नतीजे में अल्लाह पाक की जात पर उसका यकीन और पुख्ता हो जाता है। तो जब इल्म आने के बाद और यकीन होने के बाद उसका भरोसा अल्लाह तबारक व ताला की जात पर मजबूत हो जाता है तो फरमाते हैं कि इस कैफियत का नाम तवक्कुल है कि बंदा ये जाने कि हर चीज मेरे रब की तरफ से है और इस पर यकीन रखे और फिर इस यकीन के नतीजे में जो उसको रब तबारक व ताला पर एतमाद और भरोसा कायम होता है इसी का नाम तवक्कुल है। फिर बंदा असबाब अख्तियार करता है लेकिन असबाब अख्तियार करने के साथ साथ सिपुर्दे खुदा कर देता है कि मैंने कोशिश की, मैंने मेहनत की, मुझे अल्लाह तबारक व ताला की जात पर भरोसा है, अब मेरा रब जैसे चाहेगा वही फरमाएगा। जब बंदे को इस तरह भरोसा हो जाता है तो इसी का नाम तवक्कुल है। मोहतरम नाजरीन, कुरान और हदीस में तवक्कुल के बारे में तरगीब भी इरशाद फरमाई गई है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहु हस्बु, यानी जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफी है। और तवक्कुल करने वालों की जजा बयान करते हुए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया बेशक जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए जरूर हम उन्हें जन्नत के बाला खानों पर जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, हमेशा उनमें रहेंगे। अमल करने वालों के लिए क्या ही अच्छा अजर है वो जिन्होंने सब्र किया और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। मेरे मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक की इस आयत में सब्र करने वालों और अल्लाह पाक पर भरोसा रखने वालों की और अच्छे अमाल करने वालों की ये जजा बयान की गई है कि वो जन्नत के बाला खानों में होंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे और अमल करने वालों का क्या ही अच्छा अजर है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुतवक्किलीन तवक्कुल करने वालों का बड़ा अजर सवाब बयान फरमाया है, उनकी बड़ी जजा बयान फरमाई है। चुनाचे हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अनुमा से मरवी है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में मेरी उम्मत में से 70,000 बगैर हिसाब के दाखिल होंगे और ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं कराते हैं और बदशगुनी नहीं लेते हैं और अपने परवरदिगार अज़्ज़वजल पर तवक्कुल करते हैं। ये हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम में है। इसमें ये बताया गया कि जो अल्लाह पाक पर भरोसा करने वाले हैं अल्लाह पाक ऐसे 70,000 लोगों को जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल फरमा देगा। इस हदीस पाक में ये भी फरमाया गया कि जो झाड़ फूंक कराने वाले नहीं है, यहाँ जिस झाड़ फूंक से मना किया गया है वो झाड़ फूंक है कि जो कुफ्रिया अल्फाज पर, नाजायज अल्फाज पर, गलत अल्फाज पर मुश्तमिल हो, वरना जायज अल्फाज के जरिए दम कराना जायज है। अगर कोई इलाज करवाता है दवाई पर भरोसा नहीं रखता, दवाई को इसलिए खाता है कि इससे बीमारी दूर होती है, ये एक जरिया है, लेकिन दवाई ने बीमारी दूर नहीं करनी, मेरे रब ने शिफा देनी है, तो ये भी तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। तो अल्लाह पाक पर तवक्कुल करने वालों की हदीस पाक में ये जजा बयान की गई कि ये बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अनु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फाके में मुब्तला हो और वो लोगों के सामने अपने फाके को बयान करे तो अल्लाह ताला उसके फाके को दूर नहीं करता, और जिस शख्स को फाका हो और वो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करे तो अल्लाह ताला उसे जल्द वफात देकर या देर से रिज्क अता फरमाकर बेनियाज कर देगा। यानी जिसके घर में फाका हो और वो लोगों से शिकायतें करता फिरे और वो लोगों के सामने जो है वो इसके तज़करे करता फिरे तो अल्लाह ताला कभी भी इसके फाके को दूर नहीं करेगा। क्यों? कि वो लोगों से तलब कर रहा है, अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं कर रहा। और इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपने फाके को बयान करे, लोगों के सामने बयान ना करे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे कि या रब्बे करीम, मेरा तो बस तेरी ही जात पर आसरा है और मुझे ये मालूम है तूने ही अता करना है और तू ही रिज्क अता फरमाने वाला है, और फिर असबाब को तर्क ना करे, कोशिश करे और अल्लाह पाक की जात पर भरोसा रखे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसको रिज्क अता फरमा कर लोगों से बेनियाज करेगा, क्योंकि जो अल्लाह पाक पर भरोसा करता है अल्लाह फिर उसे लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ता, अपने करम के खजानों से उसको अल्लाह पाक बेनियाज फरमा देगा। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल करने को शैतान से बचाओ यानी शैतान से हिफाजत का जरिया भी करार दिया है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अनु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने घर से निकले फिर कहे बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से निकल रहा हूं, मेरा पूरा पूरा तवक्कुल अल्लाह ही पर है, तमाम ताकत और कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त कहा जाता है यानी उसको फरिश्ते कहते हैं, अब तुझे हिदायत दे दी गई, तेरी तरफ से किफायत कर दी गई और तू बचा लिया गया। ये सुनकर शैतान उससे जुदा हो जाता है, उससे दूसरा शैतान कहता है कि ये आदमी तेरे हाथ से निकल गया, इसे हिदायत दे दी गई, इसकी जानिब से किफायत कर दी गई और वो तेरी गिरफ्त और तेरे चुंगुल से बचा लिया गया। बंदा जब अपने घर से निकलता है और घर से निकलते हुए ये कहता है कि मेरा तवक्कुल और मेरा भरोसा अल्लाह पाक की जात पर है, अल्लाह तबारक व ताला की जात ही खैर की ताकत और खैर की कुव्वत अता फरमाने वाली है, मेरा अल्लाह ताला की जात पर भरोसा है, तो फिर उसको हिदायत भी दे दी जाती है, अल्लाह ताला उसको काफी भी हो जाता है और अल्लाह तबारक व ताला उसको शैतान के शर से भी महफूज कर लेता है। क्यों? कि इसने अल्लाह पाक पर तवक्कुल की, अल्लाह पाक से दुआ की, तो अल्लाह पाक ने इसके तवक्कुल करने की वजह से इसको शैतान के शर से बचा लिया। मोहतरम नाजरीन, इन तमाम अहदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल करने की गोया के तरगीब भी इरशाद फरमाई, हुक्म भी इरशाद फरमाया, उसके फजाइल भी इरशाद फरमाए। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व ताला की जात पर तवक्कुल करें, भरोसा करें, एतमाद करें। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हम इसकी मालूमात हासिल करें, तवक्कुल का बयान पढ़ें, बिलखसूस इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब इहयाउल उलूम से इसका मुताला बहुत ज्यादा मुफीद है। जब तवक्कुल के बारे में पढ़ेंगे तो इसका इल्म हासिल होगा, और जब इसका इल्म हासिल होगा तो हम तवक्कुल करने वाले बनेंगे। پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مطالعہ کریں، دوسری بات یہ ہے کہ توکل کے بارے میں ہم بزرگان دین رحمہم اللہ کے اقوال کو پڑھیں، ان کے توکل کو پڑھیں کہ ان کا توکل اللہ پاک پر کیسا تھا. حضرت سیدنا سال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، متوکل کی تین نشانیاں، تین علامتیں ہیں. نمبر ایک، سوال نہیں کرتا، جب اسے کوئی چیز دے تو رد نہیں کرتا، یعنی لوٹاتا، واپس نہیں کرتا. نمبر تین، جب چیز پاس آ جائے تو اسے جمع نہیں کرتا، یعنی پہلے سوال نہیں کرتا، مل جائے تو واپس نہیں کرتا، اور جب لے لیتا ہے تو اسے اپنے پاس جمع نہیں کرتا بلکہ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے. اسی کو حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. یعنی کسی کی چیز دیکھ کر اس کے بارے میں تما نہیں کرنا، اپنے دل کے اندر لالچ نہیں پیدا کرنی ہے مجھے مل جائے، اور پھر اگر وہ چیز اللہ پاک کی طرف سے مل جائے تو اسے منع نہیں کرنا، جائز طریقے سے مل رہی ہے تو اسے منع نہیں کرنا، اور پھر جب وہ چیز آ جائے تو اسے جمع کر کے نہیں رکھنا، خود اپنی حاجت کے لیے استعمال کرے، دوسرے مسلمانوں کو دے دے. جب ہم بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت پڑھیں گے اور ان کے توکل کے نظارے ملاحظہ کریں گے، ان کے اقوال کو پڑھیں گے، ان کے توکل کو دیکھیں گے، تو تب ہمیں توکل کا علم بھی ہوگا، ہمارے دل کے اندر اس کی رغبت بھی پیدا ہوگی، اور اس کو کرنے کی طرف ہم بڑھیں گے بھی. سے توکل پیدا کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے ہم گناہگاروں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے. توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے ہر ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو جب ہم اللہ پاک سے یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھیں گے، بھروسہ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ توکل کی صفت جو نجات دلانے والے اعمال میں سے ہے یہ ہمارے اندر پیدا ہوگی. اللہ پاک ہمارا شمار بھی متوکلین میں فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی محمد.
بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی.